SBS हिंदी सेवा के सभी श्रोताओं को नई दिल्ली से मनन कुमार का नमस्कार। पेश हैं भारत के समाचार। ऑपरेशन सिंदूर और भारत पाकिस्तान की सैन्य झड़प पर बेशक विराम लग गया हो, लेकिन उस पर राजनीति अब भी जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मासिक रेडियो ब्रॉडकास्ट मन की बात की शुरुआत ऑपरेशन सिंदूर से ही की।
आज पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है, आक्रोश से भरा हुआ है, संकल्पबद्ध है। आज हर भारतीय का यही संकल्प है, हमें आतंकवाद को खत्म करना ही है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सेनाओं ने जो पराक्रम दिखाया है, उसने हर हिंदुस्तानी का सिर ऊंचा कर दिया है। जिस प्रिसिजन के साथ नया विश्वास और उत्साह दिया है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य मिशन नहीं है, ये हमारे संकल्प, साहस और बदलते भारत की तस्वीर है।
विपक्षी दलों का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन सिंदूर का श्रेय सेना के बजाय प्रधानमंत्री मोदी को ज्यादा दे रही है, जो सेना और शहीदों का अपमान है। सुनिए कांग्रेस प्रवक्ता अलका लांबा ने इस बारे में क्या कहा।
साथियों, भाजपा के शीर्ष नेतृत्व द्वारा आदेश हुआ भाजपा के नेताओं को कि ऑपरेशन सिंदूर का सारा श्रेय एक अकेले प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया जाए। उसकी होड़ शुरू हो जाती है कि किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया जाए। इस श्रेय देने की होड़ में भाजपा के नेता अपना संयम, अपनी भाषा भूल गए और इस स्तर तक, निचले स्तर तक चले गए। बीजेपी बद जुबान पार्टी के नेता भूल गए कि वो सेना का अपमान कर रहे हैं, वो भूल गए कि वो शहीदों का अपमान कर रहे हैं, वो भूल गए कि वो शहीदों के परिवार और शहीद की पत्नी का अपमान कर रहे हैं, ये वो भूल गए।
इस बीच ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान के साथ हुई झड़प की जानकारी देने के लिए भारत के सभी 7 प्रतिनिधिमंडल अपने अपने निर्धारित देश पहुंच गए हैं। शनिवार देर रात न्यूयॉर्क पहुंचते ही संयुक्त राज्य अमेरिका और 4 दक्षिण अमेरिकी देशों की यात्रा पर गए प्रतिनिधिमंडल के नेता कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने अपने आने की वजह मीडिया को बताई।
Our idea is very much to speak to a cross section of public and political opinion in each of the countries we are going to about recent events which obviously troubled a number of people around the world and which now have subsided. There is a reasonable amount of calm that's reigning on the border between India and Pakistan today, but the fundamental underlying problem remains, and it's important that we try and enlarge your understanding of our thinking and our concerns about what's going on. So it's for us an opportunity. We will be in every country meeting members of the executive, meeting members of the legislature, meeting think tankers and influential foreign policy experts, and at the same time interacting with the media and public opinion in every one of these places.
AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने बहरीन में भारत का पक्ष रखते हुए वहां की सरकार से इस मुद्दे पर साथ देने की पेशकश की।
There is unanimity in our country, irrespective of whatever political affiliations we belong to. Yes, we have a political differences, but when it comes to the integrity of our country, it is high time that the neighboring country understands. And I would hope and request that the Bahraini government would help us in bringing back Pakistan grey list of FATF, because this money has been used to support those terrorists.
शनिवार को नीति आयोग की बैठक के अगले दिन रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा NDA शासित 19 राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के साथ दिल्ली में लंबी बैठक की। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद थे। श्री नड्डा ने बैठक में पारित प्रस्तावों के बारे में मीडिया को बताते हुए साफ किया कि आने वाले दिनों में भाजपा का फोकस ऑपरेशन सिंदूर, जाति जनगणना का निर्णय और पूर्व कांग्रेस प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाया गया आपातकाल रहेगा।
इस कॉन्क्लेव में दो प्रस्ताव पारित हुए। एक प्रस्ताव तो ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर हुआ और जो हमारे फौज के, हमारे आर्मी ने, हमारे आर्मी के जवान्स ने जो देश की सेवा की है उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की गई। साथ ही साथ जातिगत जनगणना, इस जातिगत जनगणना के विषय पर जिसको भारत की कैबिनेट ने मोदी जी के नेतृत्व में स्वीकृति दी है और ये हमारी कल्पना शुरू से थी और हमारे बिहार की सरकार, नीतीश कुमार जी की सरकार जो जिसने सबसे पहले इसका प्रस्ताव लाया था उसी उसको भी ध्यान में रखते हुए और यह जातिगत जनगणना पर भी प्रस्ताव पारित हुआ।
इस बैठक में भाजपा एनडीए शासित राज्य सरकारों को गुड गवर्नेंस अपनाने को कहा गया। इसके अलावा मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के एक साल पूरे होने, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 10 साल पूरे होने और देश में लगी इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने जैसे कार्यक्रमों की रूपरेखा पर भी विचार किया गया। इन दिनों भारत भर में मौसम अपना विचित्र स्वरूप दिखा रहा है, जिसे मौसम वैज्ञानिक क्लाइमेट चेंज से जोड़कर देख रहे हैं। पिछले हफ्ते भारतीय मौसम विभाग ने देश भर में आंधी, बारिश और हीट वेव का अलर्ट एक साथ जारी किया। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र और गोवा के तटीय इलाकों में बहुत तेज बारिश के साथ ही हीट वेव का रेड अलर्ट भी जारी किया। छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, गुजरात, कर्नाटक जैसे राज्यों में भारी बारिश के साथ ही हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया गया है। हरियाणा के 7 जिलों में लू का येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि बगल में स्थित हिमाचल प्रदेश के 8 जिलों में ओलावृष्टि व तूफान का ऑरेंज अलर्ट है। पिछले 3 दिनों में राजधानी दिल्ली के लोगों को कभी लू तो कभी तेज तूफान और बारिश के कारण सामान्य से 10 डिग्री कम तापमान देखने को मिला। मानसून ने भी सभी को हैरान करते हुए निर्धारित समय से 8 दिन पहले केरल में प्रवेश कर 16 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार मानसून जल्दी पहुंचने की मुख्य वजह अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बढ़ी हुई नमी है। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन भी मौसम के स्वरूप में बदलाव की एक बड़ी वजह माना जा रहा है। और अब समाचार खेल जगत से। ओपनिंग बल्लेबाज शुभमन गिल भारतीय टेस्ट टीम के नए कप्तान चुने गए हैं, जबकि ऋषभ पंत को उपकप्तान नियुक्त किया गया है। 25 साल और 258 दिन की उम्र के शुभमन गिल टेस्ट क्रिकेट में 5वें सबसे युवा भारतीय कप्तान हैं। 20 जून से शुरू हो रहे इंग्लैंड दौरे में भारत को 5 टेस्ट मैच खेलने हैं। विराट कोहली और रोहित शर्मा द्वारा टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिए जाने के बाद टीम में साई सुदर्शन और करुण नायर को जगह मिली है। वहीं शार्दुल ठाकुर की भी टीम में वापसी हुई है। तो ये थे अब तक के समाचार। नमस्कार।